I speak to the youth more personally than I usually do.
मैं युवक से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से बातें कर रहा हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ. युवक वर्ष तुम्हारे साथ तोलूंगा. तुम अनमोल हो. मैंने तुम्हें कई देशों में देखा है. तुम प्रधान पेकक के जवान पीढ़ी से कई बेहतर हो. अब मैं 87 साल का हूँ. तुम आश्चर्य होगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला सकता हूँ इतना बूढ़े होने पर. मैं एक विशोष शायरी को प्रस्तुत करता हूँ. बुढ़ा कौवा धीमी हो रहा है, जवान कौवा नहीं. जो जवान कौवा नहीं जानता, बुढ़ा कौवा बहुत जानता. बुढ़ा कौवा जवान कौवा से बेहतर है चीजों को जानने में. बुढ़ा कौवा जवान कौवा से ज्यादा जानता है. धीमी बुढ़ा कौवा क्या नहीं जानता है किस तरह तेज चला जाए. जवान कौवा ऊपर नीचे उड़ता है और धीमी बुढ़े कौवे के इर्द गिर्द उड़ता है. तेज जवान कौवा क्या नहीं जानता है कहाँ जाना है. ये शायरी विलियम वॉर्ड्सवर्थ से नहीं, मगर फिर भी वो याद रखने वाली शायरी है. उसके साथ जो दुनिया में अभी हो रहा है, नीति के स्थान के साथ कम होना, तुम जवान लोग दुश्मनों के स्थान पर बड़े हो रहे हो. हम समाचार में से जानते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था और लूसिफा अपने साथी के साथ धरती पर भेज दिए गए. स्वर्ग के पिता की योजना के बर्बाद करना चाहता है और उन सभी के मन और कार्य को शासन करना चाहता है. मगर विरोधी मुसीबतों और बहकावे के होते हुए भी तुम्हें नाकाम को ना होना और डरना नहीं. जब मैं 17 साल का था, विद्यार्थी की तरह तैयार ही था हाई स्कूल के डिग्री लेने के लिए, कुछ कमजोरियों के साथ. जो मैंने सोचा था हमारे जिंदगी के प्रस्तुति अचानक से एक शनिवार सोप को बदल गया. दूसरे दिन हमें हाई स्कूल में बुलाया गया. रंगमंच पर एक कुर्सी और छोटा सा दूरदर्शन रखा हुआ था. स्कूल के निदेशक ने दूरदर्शन को चालू दिया. फिर हमने प्रधान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की आवाज को सुना, जब तक उसने बताया कि हवाई बंदरगाह को बॉम्ब कर दिया गया है. यूनाइटेड स्टेट्स जापान के साथ युद्ध कर रही थी. फिर बाद में बतलाया गया दोबारा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की आवाज की ओर से कि हमारे देश जर्मनी के साथ युद्ध कर रहा है. उसी समय जवान लोगों की पीढ़ी की आगे की जिंदगी बिना ठिकाने का ना रहा. हमें पता नहीं था कि आगे किया था. आज यहाँ पर युद्ध और युद्ध होने की खबरें और पूरी धरती बेचैनी में है. सुसमाचार का योजना वो है आनंद की महान योजना. योजना के लिए परिवार मुख्य है. परिवार उन जीवी शक्ति पर लायक बने रहने पर निर्भर रहती है जो तुम्हारे शरीर में है. परिवार दुनिया के लिए एक प्रकाशन, एक प्रेरित लेख पत्र जो प्रथम अधिशक्ता और 12 देवदूत के प्रसिद्ध से लिखा गया. हम सीखते हैं कि मरणशील जीव से पूर्व सारे मनुष्य जाति, पुरुष और नारी, परमेश्वर की छाया में बने थे. हर एक स्वर्ग के माता पिता के प्यारे आत्मा के पुत्र या पुत्रिया है और उस तरह हर एक के पास दिव्य प्रतिकारिक और नसीब है. लिंग एक जरूरी अनोखा है और मनुष्य जीव से पूर्व बनाता है. हमें आगे जाना कि परमेश्वर ने आगे दी है कि उत्पादन की पवित्र शक्ति सिर्फ आदमी और औरत के बीच निभाई जा सकती है जो विधि पूर्वक शादीशुदा हो और पति और पत्नी की तरह. लूसिफा और उनके चेलों को जो महान सजा वो अपने आप से भरा है कि वो मरणशील शरीर से अस्वीकार होना. कई लालच जो तुम झेलते हो सबसे गंभीर है तुम्हारे शरीर से. तुम सिर्फ शक्ति नहीं रखते, एक नया पीढ़ी को उत्पन्न करने में बल्कि तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है। तो सभी जीवित आत्मा जिसके पास शारीरिक शरीर है उसी को शक्ति मिलती है विरोधी पर। तुम लालच से कष्ट हो क्योंकि तुम्हारे शरीर प्रकृति से, मगर तुम्हारे पास शक्ति है उनसे और उसकी देवदूत से भी। उस समय जब मैं हाई स्कूल से डिग्री लेकर निकला, मेरे कई कक्षा के बच्चे युद्ध में चले गए थे, उनमें से कुछ कभी न लौटे। बाद में हम शामिल हो गए। हम अपने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्या हम युद्ध में बचेंगे, क्या दुनिया बचेगा जब हम वापस लौटेंगे। मैं जानता था कि मुझे सेना में जाना था, तो मैं कैलिफोर्निया गया उड़ाने को सीखने के लिए। उस समय मेरे पास मजबूत गवाही नहीं था कि सुसमाचार सच्चा है, मगर मैं जानता था कि मेरे सेमिनरी अध्यापक एबल एस रिच और जॉन पी लिली वाइट जानते थे कि वो सच्चा है। मैंने उन्हें गवाही देते हुए सुना था और मैंने उन्हें विश्वास किया। मैंने अपने आप सोचा कि मैं उनके गवाहियों पर निर्भर रहूंगा जब तक मेरे पास खुद ही है, और वही मैंने किया। मैंने कुलपति का आशीर्वाद के भविष्य में सुना था, मगर मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। हर स्टेक में वहाँ एक कुलपति नियुक्ति है जिसके पास भविष्यवाणी की आत्मा और प्रकट होने की क्रिया की आत्मा है। उसके पास व्यक्तिगत और व्यक्तिगत आशीर्वाद देने के अधिकार होते हैं। उन्हें देने को जिन्हें उनके बिशप से अनुमति मिलती है। जबकि कुलपति का आशीर्वाद बहुत व्यक्तिगत है, मैं तुम्हें अपने से एक छोटे से बात बतलाता हूँ। तुम्हें पवित्र आत्मा के फुसफुसाहट से मार्गदर्शन मिलेगी और तुम्हें खतरे की चेतावनी मिलेगी। अगर तुम उस चेतावनी पर अमल करोगे, स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीर्वाद देगा ताकि तुम दोबारा अपने प्यार करने वाले से मिल सकोगे। चाहे वह शब्द अगर बहुत ही छोटा हो, वो मुझे पूरे बड़े कागज की तरह लगा। मुझे आशीर्वाद मिलती युद्ध से लौटने के अगर मैं अपने वादों को निभाता और अगर मैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा को सुनता। जबकि मुझे वो उपहार बपतिस्मा पर ही मिल चुका था, मुझे अभी तक पता नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या था या प्रेरणा किस तरह कार्य करती है। मैंने वो पाया जो मुझे जरूरी था मोमन धर्म शास्त्र के प्रेरणा को जानने के लिए। मैंने उसे पढ़ा। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा के समर्थ से बोलते हैं, इसीलिए वे मसीह की वाणी बोलते हैं। इसीलिए मसीह की वाणी को प्याला पियो, क्योंकि देखो मसीह की वाणी तुम्हें बतलाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। शायद महान कार्य को मैंने मोमन की धर्मशास्त्र को पढ़ने से सीखा है कि आत्मा की आवाज महसूस से आती है, नहीं कि आवाज से। तुम सीखोगे कि जिस तरह मैंने सीखा है, सुनो उस आवाज को महसूस किया जाता है, नहीं कि सुनना। निफाई ने अपने बड़े भाई से कहा, तुमने एक स्वर्गदूत को देखा और उसने तुमसे बातें की। हाँ, तुमने समय समय पर उसकी वाणी को भी सुना। उसने तुमसे धीमी आवाज में बातें की, लेकिन तुम्हारे ध्यान उस ओर नहीं गया और उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ आलोचक ने कहा कि ये व्यक्तिगत गलत है, क्योंकि तुम शब्दों को सुन सकते हो, तुम महसूस नहीं कर सकते, मगर अगर तुम कुछ भी धार्मिक वार्तालाप से जाते हो, तुम जानते हो कि सही शब्द उसके बतलाने के लिए जो स्थान ले सकता है वो शब्द है महसूस। पवित्र आत्मा का उपहार अगर तुम सम्मित हो, मार्गदर्शन करेगा और बचाएगा और तुम्हारे कार्य को भी सही करेगा। ये एक धार्मिक आवाज है जो मन में आती है, एक सोच या महसूस की तरह तुम्हारे दिल में रहता है। और प्रभु ने ओलिवा कार्डरी को बतलाया कि सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे मन और दिल में बतलाता हूँ पवित्र आत्मा से जो तुम पर आएगा। ये नहीं है कि तुम जिंदगी में कोई गलती नहीं करोगे, मगर तुम कोई बड़ी गलती नहीं करोगे पहले चेतावनी के बिना पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। ये वादा गिरजाघर के सभी सदस्यों के लिए है। कुछ बहुत बड़ी गलती करेंगे, सुसमाचार के नियम को नहीं मानेंगे। यह समय है तुम्हें प्रेषित करना, पश्चाताप और पूरी तरह से क्षमा करना को याद दिलाता है कि ताकि तुम दोबारा साफ बन सको। प्रभु ने कहा, सुनो, जो अपने पापियों से प्रेषित कर चुका है उसी को क्षमा किया जाएगा और मैं प्रभु उन्हें कभी नहीं याद करता। अगर विरोधी तुम्हें बंदी से ले जाए कुचाल की ओर, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारे पास वो चाबी है जो दरवाजे को अंदर से खोल सकती है। तुम साफ हो सकते हो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान से। तुम मुसीबत के समय सोचते हो कि तुम बचने के लायक नहीं हो क्योंकि तुमने गलती की है बड़ी या छोटी, और तुम सोचते हो कि अब तुम खो गए हो। ये कभी सच नहीं है। सिर्फ पश्चाताप भर सकता है जो पाप होता है, मगर पश्चाताप भर सकता है जो दर्द मिलता है, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम उस चाल चलन में शामिल हो रहे हो जिसमें तुम्हें शामिल नहीं होना है, या अगर तुम उन लोगों के साथ शामिल हो रहे हो जो तुम्हें बुरे मार्गदर्शन के ओर ले जाते हैं, वो समय है तुम्हें अपने आजादी और अपने चुनने की शक्ति को इस्तेमाल करने का। आत्मा की आवाज को सुनो और तुम्हें भूल भुगता से नहीं ले जाएगा। दोबारा मैं कहता हूँ कि आज युवा विरोधी के रागे में मरणशीलता के स्तर से गिरते हुए पड़ रहे हैं, मगर प्रभु की सेवक की तरह मैं वादा करता हूँ कि सुरक्षा मिलेगी और विरोधी के हमले से बचाव मिलेगा अगर तुम पवित्र आत्मा से मिली प्रेरणा को सुनोगे। संकोच से कपड़े पहनो, धीमी आवाज में बातें करो, अच्छे गीत को सुनो, अमन रणशील और व्यक्तिगत रूप से गिरने वाले कार्य से बचो। अपनी जिंदगी को निपुणता से और अपने आप को आज्ञा दो कि वो विश्वासी रहे, क्योंकि हम तुम पर आशा करते हैं, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। स्वर्ग के पिता तुमको हमेशा रक्षा करता है। मेरा गवाही की शक्ति बदल गई जिस समय मैंने ये महसूस किया, जब मैं सेमिनरी के अध्यापक के गवाही पर मैं निर्भर था। आज मैं दूसरों पर निर्भर हूँ जब मैं चाहता हूँ, और पोलियो के कारण जो मुझे बचपन से है, मगर धार्मिक स्थितियों के साथ से नहीं। मैं विश्वास करने लगा हूँ समझने के लिए और उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनके सुसमाचार के अनमोल सच्चाई को जान चुका हूँ। उसके एक खास गवाही की तरह मैं गवाही देता हूँ कि ये जो यू सांस्कारिक जीवन से पूर्व को जीवन में शुरू हुआ था वो खास है। लुसेफा की हार होगी। हमने पहले कौओं के बारे में बात की थी। युवा को लक्षणता के साथ सभी मार्गदर्शन में नहीं चलना चाहिए आगे के रास्ते को जानने बिना। वहाँ पर लोग हैं जो रास्ते को जानते हैं। इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। प्रभु ने अपने गिरजाघर की चाबियों और सलाहकार के सिद्धांत पर संगतित किया है। गिरजाघर में 15 पुरुष बने रहते हैं, भविष्यवक्ताओं, देवदूत और प्रकट करने वाले। प्रथम अध्यक्षता के सदस्य और 12 पुरोहित के परिषद गिरजाघर को जरूरी मार्गदर्शन देने के लिए के सभी चाबियों को रखते हैं। वहां भविष्यवक्ता प्रधान मॉनसन है जिसे सभी चाबियों को इस्तेमाल करने का अनुमति है। सुसमाचार के लिए जरूरी है कि प्रथम अध्यक्षता और 12 के परिषद सलाह से कार्य करने और उन सब सलाहकारों के फैसला एकमत हो, और वो है जो होता है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि वो हमें सिर्फ उसी की कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन देगा और हमें ढूंढेगा। प्रथम अध्यक्षता और 12 के प्रशासिशा जानते हैं कि उसने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया है व्यक्तिगत और सलाह मिलकर। कभी-कभी हम लालच में पड़ सकते हैं वो सोचने जो जिस तरह मैं युवा में सोचता था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों हो रही है दुनिया का अनंत हो जाएगा। दुनिया का अंत आने से पहले मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए, वो सही नहीं है। तुम आगे की ओर देख सकते हो सही कार्य को करने के लिए, शादी करने को और परिवार बनाने को, अपने बच्चों और नाती पोती को देखने का, शायद पर नाती पोते भी। तुम अगर इस सिद्धांत को निभाओगे, तुम्हारे ख्याल रखेंगे और बचाएंगे, और तुम पर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से यह जानोगे कि किस ओर जाना है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम इस सच्चाई को जानेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।